نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير amazed by الأسماء الحسنى. اس سیریز میں آج ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام باقی سارے ناموں کی طرح العفوف اس پہ بات کریں گے. تھوڑا سا انفیمیلیئر نام بھی ہے اور پرونانسیشن بھی ہے, لیکن جب میں لفظ بولوں گی معافی تو آپ سمجھ جائیں گے. لفظ معافی ہی اصل میں عفو ہے. یہ کیا ہے ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اوپر آج ایک معرفت کا دریا بہنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی روشنی میں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو معاف کرنے کے ناطے سے اس کے بہت سے نام ہیں, جیسے الغفار, الغفور اور اسی میں سے آج العفو. بہت سارے لوگ غفار اور غفور اور مغفرت کے لفظ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن آج ہم اللہ کے اس نام العفو کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کا ہماری زندگیوں پہ اثر کیا ہونا چاہیے. تو عین فا واو اس کا روٹ ہے. لغت میں عفا, لفظ عفا کے دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک کیا ہے عفا عفون, زائدہ ضرورت مال. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ بقرہ میں, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. صحابہ کا ایک سوال تھا کہ ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ نے پیغام دے دیا ضرورت سے زائد ہر چیز. 219 نمبر 219 سورۃ البقرہ. تو پہلی چیز جو اس لفظ میں کیا مل گئی, زائدہ ضرورت. اور دوسرا معنی ہوتا ہے عفا یا عفو سے الازالت, نام نشان مٹا دینا. یعنی کسی چیز کا نہ صرف یہ ہے کہ ازالہ کرنا, اس کو بالکل کمپنسیٹ کرنا, بلکہ اس کو مٹا ہی دینا اور ختم کر دینا. آپ کہیں گے کوئی فرق سمجھ تو نہیں آیا. ایک واقعہ ہے, اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی, حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی. جب اللہ کے نبی اپنے دوست کے ساتھ ہجرت مدینہ کے سفر میں غار ثور میں قیام فرماتے ہیں تو یہ کھانا لایا کرتی تھیں. ابو بکر نے اپنے غلام جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا اس کو ہدایت دی کہ اسما کے قدموں کے نشانات پر سے بکریوں کے ریوڑ کو گزارا کرو. مقصد یہ تھا کہ حضرت اسما کھانا لے کر آتی ہیں تو کہیں کوئی پیچھا کرتا ہوا کھوجی کھرے ناپتا ہوا ان جگہوں تک نہ پہنچ جائے جہاں ان کو نہیں پہنچنا چاہیے. تو لہٰذا وہ جہاں سے اسما گزرتی بعد میں عامر جو تھا اپنی بکریاں گزارتا تاکہ وہ سارے نشان مکسڈ اپ ہو جائیں اور کفار کو اللہ کے نبی اور ابو بکر کا پتہ نہ چلے. اب اس نصیحت کے لیے ابو بکر صدیق جو جملہ بولتے تھے نا, یہ آج آپ کو العف کی حقیقت سمجھائے گا. اور وہ جملہ کیا تھا, فامر غلامہ, پس حکم دیا اپنے غلام کو. کس نے؟ ابو بکر نے. کیا کہا؟ ائیں یعفو آثار اسماء بنت ابی بکر, کہ اسماء بنت ابی بکر کے قدموں کے نشان مٹا دو. تو کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا نام العف کیا ہے, گناہوں کا نام و نشان تک مٹ جائے. مغفرہ کیا تھی؟ چھپا دو. ہے چھپا دو. العف کیا ہے؟ کہ نام ہی مٹ جائے. اور میں اس کو محسوس کر رہی تھی اپنے کسی ایکسپیرئنس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, اور آپ سب بھی میری اس مثال سے بہت ہی زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان کو کوئی زخم لگ جاتا ہے نا, چوٹ لگتی ہے, کبھی ہاتھ جل جاتا ہے, پھر چھالا بنتا ہے, پس بنتی ہے, پانی ہوتا ہے اس میں, کچھ بھی ہے, پھر آخر آہستہ 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 سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک نشان رہ جاتا ہے. یہ تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے. آپ آپریٹ کراتے ہیں, ٹانکے لگتے ہیں, اسٹچز, پھر کھل بھی جاتے ہیں, پھر زخم بھی ہیل اپ ہو جاتا ہے, لیکن ایک لائن رہ جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہو چہرے پہ دانا نکلا اتنا موٹا, چھیڑا نہیں آپ نے, کچھ دن اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. یا عفو چھوڑ دو, عف کے لفظ میں چھوڑ دو, ایز اٹ از لیو اٹ. داڑھی کے لیے لفظ ہے حدیث میں, داڑھی کو چھوڑ دو, اس کے لیے بھی لفظ عف ہے, عف اللحی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا جب آپ نے اس دانے کو نہیں چھیڑا؟ ایک دو چار دن کے بعد جوش دے کے ختم ہوگا. اگلے ہفتے کدھر ہوتا ہے وہ؟ निशानी नहीं, बचपन से अब तक जितने चेहरे पे दाने निकले, अगर उनके निशान होते तो क्या हम देख फेस को अपने कैसा पाते। तो अलाव क्या है कि जख्म का, गुनाह का असर तक मिटा दो। अभी देखते हैं इसको, तीन पहलू आपको इसके दिखेंगे। सबसे पहला क्या है, वो गुनाह का नामो निशान तक मिटा देता है। युजीलु व यमखू, जाला यजीलु होता है ना, जिससे लफ्ज जवाल आता है, किसी चीज़ का जायल हो जाना, तो युजीलु व यमहू। फिर दूसरा मुकाम क्या होता है, सुम्म यरदा, फिर राजी भी हो जाता है। और उसके बाद फिर तीसरा मुकाम जो आता है ना, वो अता का मुकाम है, फिर इसके बाद वो अता भी करता है बंदे को। और वो क्या होता है, सुम्म युती, फिर अता भी करता है। तो आप कह सकते हैं कि अलफ वो हस्ती है, युजीलु व यमहू, सुम्म यरदा, सुम्म योति। वही अलफ अल्लाह ज़ात सुबहान तला, इन सिफात की हामिल सिर्फ एक ही ज़ात है, जो गुनाहों को मिटा भी देता है, फिर इसका निशान और एहसास तक बाकी नहीं रहने देता, और फिर गुनाहगार को गुनाहों से पाक करके इसको अपनी रज़ा से नवाजता है, और फिर राजी हो जाने के बाद इनाम भी अता करता है। आप में से, मेरे में से कोई ऐसा? कितनों के लिए दिल में गुस्से, ग्रज, कीने, बुग़ज़ ले के बैठे हैं, अल्लाह की पनाह। आप देखिए कि लफ्ज़ गफूर ये भी था अच्छा, गफ्फार भी है, अल गफ्फार के साथ ऑफ कोर्स अल गफूर। अल अफूफ और अल गफ्फार में फ़र्क क्या है, पहले इसको समझेंगे ना। मैं चाह रही हूँ कि आपको सब नामों का हल्का हल्का तकाबुल दे दूँ, जो माफ़ी और मगफरत है, फिर आप लफ्ज़ अलफ को इंजॉय करेंगे। और याद रखिए, ये वो नाम है कि जिससे वो दुआ निकली जो आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह, कि जो हज़रत आयशा सिद्दीका को अल्लाह के नबी ने लैलतुल कद्र को पाने की सूरत में मांगने का हुक्म दिया था। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ुन, ये जो कहते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ये है असल में अल अफुव। तो अल अफुव बोलने में भी थोड़ा सा आपको अगर मेहनत करनी पड़े तो कीजिए। देखते हैं कि फ़र्क क्या अल गफ्फार और अल अफुव में। आप देखिए कि जब तकाबुल करते हैं ना, तो दोनों नाम बंदे के गुनाहों को माफ़ करने के मानों में आते हैं ना, लेकिन अल अफुव की सिफत अल गफूर से कहीं बढ़कर है। कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला मग़फ़रत का मामला करते हैं, और कुछ लोग इसके अफ यानी अल अफुव के मुस्तहिक होते हैं। कैसे? मग़फ़रत के मानी क्या है, कि जब कभी किसी बंदे से गुनाह का इर्तिकाब हो गया और इसने गुनाह पर माफ़ी मांगी, ये पहला स्टेप होता है ना, बंदा जब गुनाह करता है तो फिर उसको एहसास हो जाता है, तो अल्लाह ताला इस पर दुनिया में उसके गुनाह पे पर्दा डाल देता है और आखिरत में भी पर्दा पोशी करेगा। बड़ी प्यारी हदीसें हैं, अल्लाह ताला कहते हैं सतर तू का, मैंने तुझे दुनिया में भी ढांप दिया, मैं आज भी ढांप दूंगा, पहले दिखाएगा बाद में छुपाएगा, सजा नहीं देगा मगर नामे अमाल में वो गुनाह मौजूद होगा, एकदम तो बंदा घूम जाएगा। हदीस है कि जब नामे अमाल देखेगा उसको अपने सारे अगले पिछले गुनाह दिख रहे होंगे, कांप जाएगा, कहेगा अल्लाह मुझे तो ये कहा गया था कि तौबा कर लोगे तो माफ़ हो जाएगा, तुझे तो सारे ही तरह। फिर एक झुरझुरी आएगी उस बंदे को, और उसके बाद दोबारा देखेगा तो नामा अमल बिल्कुल क्लीन, एडिटेड, वो अनएडिटेड फाइल थी, ये एडिटेड फाइल है। तो ये है अल अफूफ। अल गफ्फार और अल गफूर दोनों का फ़र्क आगे देखेंगे हम जाके, लेकिन क्या पता चला कि गुनाह नामे अमाल में मौजूद रहेगा, और फिर उसके बाद जबकि वो इस गुनाह पे सजा देने पे पूरी तरह कादिर है, लेकिन छुपा लेगा। इसके बरक्स अल अफूफ ज़ात वो है, जब इसने अफू का मामला किया तो गुनाहगार के नामे आमाल से गुनाह को इस तरह मिटाया कि कभी गुनाह किया ही ना गया था, इस तरह मिटाया कि इस गुनाह के असरात या निशान भी बाकी नहीं छोड़े। तो फिर बताइए, क्या अफ का दर्जा बड़ा है कि मग़फ़रत का बड़ा है? अफ का बड़ा है, अल अफ का दर्जा मग़फ़रत से बहुत ज्यादा आला है। तो याद रखिए, अफ का दर्जा मग़फ़रत से ज्यादा है। जरा फिर दोहराऊं, गफूर वो है जिसने दुनिया में पर्दा डाला और क़यामत के दिन भी पर्दा पोशी करेगा, मगर इंसान को इसका गुनाह याद जरूर कराएगा। मसलन रजिस्टर में दर्ज गुनाह पे क्रॉस का निशान तो लगा होगा, मगर गुनाह का इंदराज नजर आ रहा होगा, जैसे कोई लिख के उसके ऊपर लाइनें लगा दे तो दिख तो रहे ना, गोया कि अभी गुनाह का निशान बाकी है। और गफ़रों के मामले में अल्लाह के राजी हो जाने का इसे यकीन नहीं दिलाया गया, यानी यकीनी नहीं कि अल्लाह फिर इस बंदे से बाद में खुश भी हो जाए। इसके बरक्स अलफ वो सिफत कि अल्लाह सुबहान तआला दुनिया में ही इसके नामे अमाल से इसके गुनाह का निशान और नाम तक मिटा दे और आखरत में इसका हवाला देकर सवाल नहीं करेगा ना ही सजा देगा। और फिर सबसे अजीम बात यह कि वो राजी हो जाएगा और अजीम तरीन मामला ये होगा कि इनामात से भरी जन्नत भी अता करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इस सफ़ो दरगुजर के होते हुए कौन फिर पकड़ा जाएगा। एक सफ़ोन का भी लफ्ज़ है, दरगुजर, जाने दो, मिट्टी पाओ। तो अल्लाह का नाम अलफ, इसकी शान क्या है कि वो जो गुनाहों पे पकड़ने सजा देने पे पूरी तरह कादर है फिर भी वो गुनाहों को नामे अमाल से मिटा देता है और इंसान के सहीफे से गुनाहों का नामो निशान मिटा कर अपने बंदे से राजी हो जाता है। और जैसे आप दुनिया में देखिए किसी से दिल खट्टा होता है ना, फिर थोड़ी देर बस सुलह हो जाती, लेकिन कहते मेरे सामने ना आना, दिल में कुछ रहता है। और कुछ रिश्ते ऐसे, कुछ साथी ऐसे, दिन में 10 दफा लड़ाई होके 11वीं दफा फिर खुश। अच्छा आपने कुछ कहा था, अच्छा मैं नहीं आपसे बोलती, वो कहेंगे छोड़ो तुम्हें भूल जाना है, अभी तुमने बोल पड़ना है, तुम कौन सा मेरे से दिल से नाराज हो। हाँ, और हदीस कह के क्यामत में जब बंदे को अल्लाह लेकर आएंगे तो कहेंगे बंदे को मेरे करीब करो, इस बंदे को अल्लाह के करीब किया जाएगा यहाँ तक कि बंदा अल्लाह ताला का दस्ते शफकत अपने ऊपर महसूस करेगा। फिर अल्लाह ताला उसके कान में सरगोशी करेंगे, पूछेंगे क्या तुम्हें अपना फलां फलां गुना याद है। वो शख्स कहेगा हाँ मुझे याद है यार। इस वक्त वो बंदा फिर गुमान करेगा कि अब तो बस मैं हलाक हो गया। और इस आलम में फिर अल्लाह इस बंदे से कहेगा मैंने दुनिया में तेरी सतर पोशी की, अब मैं तेरी मग़फ़रत करता हूँ, यानी इस गुनाह को पर्दे में रखता हूँ। और ये मामला अल गफूर की तरफ से होगा, जिसने गफरा का मामला किया, लेकिन क्यामत के दिन अल्लाह कह लीजिए कि गफूर के बाद फिर अलफू बनकर अपनी शान अफ के सामने आएगा। और एक दूसरे बंदे का हिसाब कैसे हो रहा होगा, ए फुलां मैं तुझसे राजी हो गया जो तूने दुनिया में किया, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो गोया के अलफ ने क्यामत के दिन इस खुशकिस्मत बंदे से अफ़ो दरगुजर की, उसके आमाल नामे की बाज़ परस्त नहीं की और खुश होकर जन्नत में जाने का इज़ान अता किया। तो तीन बातें वाज़ हैं। देखिए कभी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपका बैग खुलता ही नहीं, वो कहते हैं जाने दो, पेपर खोलते ही नहीं। और कभी रिसर्च शुरू हो जाती है, फिर कभी कहते हैं हैंड बैग खोलें, ये हाथ में क्या है, ये बैग में क्या है, ये लैपटॉप में क्या है, खोल के दिखाएं। तो अलफूफ क्या है कि कोई आपको देखे, स्कैनर से गुजारे और कह जाइए नो प्रॉब्लम, हम आपके आज कोई स्कैनिंग कोई सर्चिंग नहीं करेंगे। अब आप अपने से एक सवाल कीजिए, आप अल्लाह तआला के बारे में क्या चाहती हैं, अल्लाह तआला आपसे गफरा का मामला करे या अफ का। तो जाहिरी बात है कि इस सिफत को जानकर यही तमन्ना है कि अल्लाह तुम्हारे साथ अफ का मामला करना। और याद रखिए क्यामत का दिन वो होगा जब इंसान के गुनाह पर इसके हाथ पांव जिस्म की खाल जमीन आसमान इर्द गिर्द की मादी चीजें दीगर लोग हत्ता के मुनकर नकीर साइक और शहीद जो दो फरिश्ते कब्र के बाहर खड़े होंगे इस्तकबाल के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मुजरिम को जेल की तरफ ले जाते हुए दो पुलिस मैन इधर उधर होते हैं, ये सारे उस दिन गवाह खड़े होंगे। और नामे अमाल में दर्ज गुनाह से किसी तौर पर छुटकारा नजर नहीं होगा, उस वक्त सोचिए क्या आलम होगा। और अगर अल्लाह अलफ हमारे गुनाहों के सारे गवाह भी ना रहने दे, हमारी याददाश्त से निकाल दे हमारे जिस्म की अज़ाज़ ज़मीन आसमान, जिधर जिस ज़मीन के ऊपर खड़े होके गुनाह किया, जिस आसमान के नीचे गुनाह किया और वो लोग जिनके सामने गुनाह किया, अगर वो सब के हाफ़ज़ों से सब के जहनों से भुला दे तो वो अल अफ है। फरिश्तों को भी अलफ ने सब गवाहियां मिटा देने का हुक्म दिया होगा, जाके मेन से डिलीट कर दो। एक होता है आप अपने कंप्यूटर से निकाल दो, लेकिन ऊपर ऑनलाइन चला गया, कहीं किसी गूगल ड्राइव में चला गया, कहीं लिंक में चला गया ना, वेबसाइट पे चला गया, ऐप पे चला गया, अल्लाह सब जगह से निकलवा देगा। गोया कि एक नया इंसान बिल्कुल नई याददाश्त के साथ साफ सुथरा, जिस पर गुनाह का कोई मैल नहीं, इसके गुनाह का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई मदई नहीं, कोई दावा करने वाला नहीं। सोचिए फिर उस बंदे की खुशबख्ती का उस दिन क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने अलफुब होने का जो आपको उस दिन अपना रंग दिखाना है उसकी के लिए तो फिर हमें अल्लाह ने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के इस मामले को ज़िंदगी में लाएंगे, आपको अपने बड़े छोटे सारे गुनाह याद आएंगे, उतना आपको अल्लाह ताला से बात करने में मज़ा आएगा। आप देखिए कि बाज़ गुनाहों के नक़ूश बड़े गहरे होते हैं, कैसे मिटते ही नहीं, धब्बा देखिए। मैं तो गुनाह को दो चीज़ों से समझती हूँ और कई लेक्चर्स में इसकी पूरी एनालिसिस दी है। या तो कैंसर है गुनाह, जिसकी जड़ें गहरी होती जाएं तो उतना फैल जाता है, और या फिर एक कपड़े का धब्बा है, फौरन धो लेंगे तो पानी से साफ, इंक गिर गई आपके एक टेबल क्लॉथ पे, जाइए धो लीजिए अभी धुल जाएगा, थोड़ी देर बाद धोएंगे तो साबुन लगेगा, और फिर कुछ और देर सुस्ती की, एक रात पड़ा रहा, अगले दिन धोया तो पता नहीं ब्लीच ही ना डालना पड़े। तो गुनाहों के मामले इतने कच्चे नहीं है। अलफू वाप के पक्के दाग, जिसको कहते हैं चाय का दाग नहीं मिटता, चॉकलेट का दाग नहीं मिटता, फलां का नहीं मिटता, वो कहता है आओ मेरे पास, तुम्हारे सारी जिंदगी के गुनाहों के नकूश कितने गहरे हों मैं उसको मिटाऊंगा क्योंकि मैं अलफ हूँ। सवाल ये कि क्या बड़े गुनाह भी माफ करेगा या सिर्फ छोटे छोटे? वो कहता है छोटे नहीं, बड़ों से बड़े गुनाह भी माफ कर दूंगा, शर्त ये कि तौबा करके आओ। शिर्क की भी तौबा कराओगे तो अलफू वैसे करेगा जैसे कभी तुमने किसी जगह जाके माथा ही नहीं टेका, बल्कि और आगे आओगे तुम्हारे पिछले गुनाह नेकियों में बदल दूंगा, जहां तुम्हें गुनाह दिख रहे थे वहां तुम्हें अपनी नेकियां दिखेंगी। और याद रखिए कि सहराओं में सफर करने वाले मुसाफिर कहीं पड़ाव डालते या जैसे खानाबदोश टाइप लोग नहीं होते, तो अपना ठिकाना बनाते तो अपने खेमे के इर्द गिर्द छोटे छोटे घड़े खोद लेते थे। आज भी अरब लोग जो हवा चलती है ना सहराओं में, उसके अंदर अलफू करी हो नाफून का लफ्ज़ लाते हैं, तो वो खेमों के इर्द गिर्द घड़े क्यों खोदते थे? ताकि बारिश का पानी इसमें जमा हो जाए। और फिर जब वो कूच करते सब साजो सामान उठा लेते मगर घड़े इसी हालत में छोड़ जाते। कि अब हमें क्या, हम तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद गहरे से गहरे घड़े भी भर जाते थे, इधर की मट्टी उधर की मट्टी, इधर के पानी उधर का कर करा के, बिल्कुल एक वक्त आता था कि वो सहराओं की हवाएं इधर से हवा को अंदर लाती, उसमें जाती उधर जाती, वो घड़े चंद दिनों में ऐसे दोबारा रेत से भर जाते कि उसके निशान तक बाकी न रहते। तो बताइए अल्लाह अपनी सिफत अलफू की हवा से जब अपने बंदे के गुनाहों के घड़ों को भर देगा तो कोई गुनाह दिखेगा? क्योंकि इंसान अल्लाह की नजर में इन घड़ों से ज्यादा कीमती और अजीम है, तो लिहाजा अल्लाह से उसका अफ मांगिए। इंसान इसलिए भी अजीम है कि वह खलीफतुल अर्ज़ है, अल्लाह का महबूब है, और अल्लाह ने अपनी महबूब मखलूक के लिए जन्नत जैसी अजीम और पाकीजा जगह बनाई है। और याद रखिए जन्नत के वासियों को पाकीजा करने के लिए उसने अपना नाम अलफ रखा है। तस्वुर में लाइए एक प्याला है, गंदा हो गया, आप इसको खूब अच्छी तरह साफ करें, फिर इस प्याले में शहद भर दें या गंदे मैले कपड़े को खूब अच्छी तरह धो लें, किसी अच्छे खुशबू वाले डिटर्जेंट से धोएं, कितनी खुशबू आती है। तो जब गंदे कपड़े साफ होकर खुशबू दे दें, जब मैला बर्तन धुल के अच्छी सी किसी फ्रेग्रेंस के लिक्विड के साथ धोएं वो खुशबू दे दे, तो फिर अलफूफ भी इंसान किसी तरीके से तत्हीर करता है, पाक करता है और तातीर करता है, इतर लगा देता है उसको। पहले गुनाहों से पाक साफ करता है, फिर अपनी रजा और अता की खुशबू के साथ मुजयन करता है, डेकोरेट करता है, एडोन करता है, और फिर उसको मुअत्तर करता है। अब कौन है जो हम में से आप में से मुजयन ना होना चाहे और मुअत्तर ना होना चाहे? जिस बंदे को अल्लाह लफूफ ने मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया, इसे सब कुछ मिल गया, तो जरूरत इस बात की है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से कभी मायूस ना हो, ना अपने आप को मायूस करें ना बंदों को करें। बाज़ लोग तबलीग में बड़े स्टबन हैं, माफ़ करना नहीं, जहन्नम में जाओगे, आग में जाओगे, करो। अल्लाह के बंदो अपनी आवाज़ों में नरमी लाओ, अपने ऊपर लो, बंदों से प्यार करो फिर माइक पकड़ो। गुनाहगारों से प्यार करें, लोग नेकों से प्यार करते हैं, अलफू गुनाहगारों से प्यार करते हैं। हदीसें इतनी है कि आप पूरी सुन ना सके, इतना वक्त ही नहीं हमारे पास। तो ज़रूरत इस बात की कि आप यहाँ बैठकर अपना कोई गुनाह याद करें, कोई जवानी का, कोई चढ़ती जवानी का, कोई बचपन का, कोई भूल, कोई चूक, कोई लग्जिश, कोई किसी के मामले में, कोई इंसान के मामले में, कोई अपने मामले में, कोई नफ्स का गलबा, कहीं आंख बहक गई, कहीं कान बहक गए, कहीं उससे भी आगे की बातें चली गई, जाके कहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, महबूब मखलूक है, फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी तत्हीर ना करे, उसको पाक ना करे? सवाल यह है कि अफ की कितनी किस्में हैं? क्या हर एक के साथ एक ही अफो दरगुजर होगा? नहीं, इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। याद रखिए कि अफो करम दो तरह का होता है, एक आम और एक खास। आम क्या है? सारी मखलूक, क्योंकि हर रोज हमारे गुनाहों की मकदार इतनी है जितने दुनिया में फितने और फसाद है, और अखबार पढ़ लीजिए, खबरें सुन लीजिए, जाके क्राइम रिपोर्ट खोलिए, दिन रात लोग गुनाहों में जकड़े में। अगर अल्लाह सुबहाना ताला इनसे दरगुजर ना करे, इन्हें हर रोज माफ ना करे, तो इनमें से एक भी जिंदा ना रहे। इंसान तो छोड़िए, जानवर ना हो, परिंदा ना हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहे और हर गुनाह पे पकड़ने लगे तो जमीन पे एक चलता फिरता ना है। वमा मिन दाबतिन, जैसे रिस्क की बात है वहां गुनाहों की पकड़ की बात है। तो अल्लाह के अफ़्वो दरगुजर की वजह से लोग आम तौर पे, अमूमी तौर पे अल्लाह की रहमत में आ रहे हैं, और जैसे बाल गिरते रहते हैं, स्किन ऊपर से उतरती रहती है, गंदा खून निकलता रहता है जिस्म से, इस तरह अमूमी तौर पे अल्लाह अफ्फो दरगुजर का मामला करते हैं। लेकिन अफ की दूसरी किस्म क्या होती है? ख़ास हिस्सा होता है जो सिर्फ उन खास बंदों के लिए होता है जो तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, फिर उसकी तरफ रुजू करते हैं, नेकियों के साथ अपनी बुराइयों को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसके ज़रिए फिर अपने रब को राज़ी करते हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला फिर उनसे दरगुजर करता है। और याद रखिए कि अल्लाह सुबहान तआला बहुत से गुनाहों से बग़ैर माफ़ी के भी दरगुजर फरमाते हैं, कभी मुसीबतें डाल के, कभी नेकियां करा के, कभी इल्ज़ाम लगा के, कभी उसको किसी कांटा चुबा कर, कोई उसकी एक चीज़ कहीं रखवा के गुम गई, कहीं कोई चीज़ चोरी हो गई, उस पर सब्र कराता है। पूरे स्टेप्स दिए हैं, मुझे वो लेक्चर याद आ रहा है गुनाहों के मिटाने के, 5-6 तरीके, अपने गुनाहों को यहीं साफ़ कराएं, वरना कब्र में फिर मौत की सख्तियों पे, फिर कब्र के हिसाब से, फिर बरजख के हिसाब से, फिर कुछ को तो क़यामत के दिन के पसीने और बोझ उठवा के, और आखिर में फिर पुल सरात, लास्ट डिसेक्शन रूम है, एक ऑपरेशन थिएटर है वो, वहाँ से हराम का खून निचोड़ेगा, फिर वहाँ अल्लाह ताला गंदगियों को मिटाएगा। तो ये उसके मामले हैं, दुनिया में मुश्किलात में डालते हैं ताकि बंदा आइंदा बड़ी गलतियों से बच जाए। तो खुलासा क्या हुआ? अल्लाह दरगुजर करने वाला और पर्दापोशी करने वाला, इसको पसंद भी करता है, खुद भी बंदों के ऐबों पे पर्दे डालता है और उनको जाहिर करना पसंद नहीं करता। वो बंदों के हक में भी यही पसंद करता है कि वो दूसरों के ऐब गुनाह और इनकी गलतियां माफ कर दें और इनको कभी दूसरों के सामने रुसवा ना करें। आज से नियत कीजिए, आज इस नाम को सुनते सुनते अभी से नियतें करें, क्योंकि अभी आपने बड़ों को माफ करना है। ऐसे ही गुनाहों के बोझ उठा उठा के फिरते हैं, फिर कहते हैं वजन बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन हो गया, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है, सब चीज़ों को पीछे करके एक स्माइल दीजिए, कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ना खुद किसी के ऊपर ज्यादती करती हूँ और कर भी दूँ तो फौरन माफ़ी मांगती हूँ। तो लिहाजा अल्लाह अपने बंदों से उनकी बुराइयों पर करम और एहसान और मेहरबानी और इनाम के बिना पे दरगुजर करता है, और फिर उन पर अपनी वसी रहमत का दिल खोलता है। आपके लिए भी ये अमल है, जिसको माफ़ करें दिल से माफ़ करें। अब देखते हैं कि सलफ सालेहीन ने अलफ के बारे में क्या कहा, बहुत ही प्यारा कॉल लगेगा आपको। एक मारूफ ताबई थे, सुफियान सॉरी इनका नाम है, बड़े प्यार से कहते हैं, आप इनके ना प्यार को भी महसूस करें। कहा करते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब मुझसे मेरे गुनाहों के बारे में पूछेगा कि भाई बताओ ये गुनाह वो गुनाह, तो मैं इसके अफ के बारे में पूछूंगा, इसलिए कि मैं इसके अफ के अलावा निजात का कोई रास्ता नहीं पाता। तो याद कर लें, आप भी अगर हमें याद आ गया, अल्लाह कहेगा ये गुनाह किया था, आप कहें अल्लाह जी आप अफ़ू हैं, वो फ़लाँ दिन क्या हुआ था, अल्लाह जी आप अफ़ हैं, अल्लाह में इन्ना काफ़ूबन तो बुलवाफ़ाफ़ना, अल्लाह हमारी वहाँ होश और बातें सलामत रखे ताकि हम बेहतरीन तरीके से ये बातें कर सकें। इसके अलावा सलफ़ सालेहीन में इमाम हलीमी क्या कहते हैं अल्लाह ताला के इस नाम के बारे में, ख़ुलासा दूंगी ताकि आप इनका जिस ले लें। कहते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जो अपने बंदों के गुनाहों के नतायज को इन से दूर करने वाली है, ये ज़रूर लिखिएगा। देखिए आप चीनी खाएंगे उसका नतीजा निकलेगा, ऑयली चीज़ें खाएंगी नतीजा होगा, मिर्च वाला खाना खाएंगे जिस्म पे कोई इफेक्ट ज़रूर होगा, पक्की बात है ना। तो हर गुनाह का बंदे पे नतीजा पड़ता है, लेकिन अल्लाह निकाल देता है, छोड़ो छोड़ो ना, इसका कोई रिएक्शन ना हो। आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे एलर्जिक होती है, अलफूफ कहता जाने दो, चश्म पोशी का मामला करने वाली, लिखेगा पूरा हिसाब ना लेने वाला। और ये उस वक्त होता है जबकि गुनाहों के बाद या तो वो लोग तौबा कर लेते हैं और इस्तगफार करते हैं, दूसरी सूरत इसकी होती है या किसी शिफात करने वाले की शिफात के हकदार होते हैं, यानी शिफात करने का हक दे देता है बंदों को, तो अल्लाह फिर अफू बनता है, चलो तुमने सिफारिश की जाओ मैं भी अलफू हूँ, मैं भी माफ़ कर दूंगा। इसी तरह एक तीसरी सूरत अल्लाह ताला क्या करते हैं, या ऐसी इज्जत के हकदार होते हैं जो कि इनकी सजाओं के लिए माने होती है, यानी इतने बड़े बंदे को अल्लाह कहता है मैं ये सजा दूँ ना, ना मैं नहीं दूंगा, और लिखिए अल्लाह ने बड़ों को बचाना है वहाँ, बड़े नेक लोग, बड़े दीनदार, उसके दीन की खिदमतें करने वाले, अल्लाह ने उनको वहाँ बचाना है। ये तो हम पकड़ाना चाहते हैं ना, अच्छा देखिए इनका एक बाल दिख रहा था, अच्छा हिजाब करके वो गीबत कर रही थी, नहीं, जो अल्लाह के बन गए, जिन्होंने दुनिया में बता दिया अल्लाह हम तेरे तू हमारा बन जा, अल्लाह ताला ने उनको ज़रूर बचाना है। तो ये अल्लाह की शान है, आप कह सकते हैं कि अलफू इनके नेक अमाल के बदले ये मामला करते हैं। इसी तरह से याद रखिए ये मामला तब होगा जब तौबा होगी, मग़फ़रत तलब करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन बड़े बड़े गुनाहों के करने से रुक जाएंगे जिनमें मुब्तला थे, नेक कामों में लग जाएंगे, फिर वो नेक अमाल इन गुनाहों का कफारा बन जाएंगे जो इनसे माजी में हुए। फिर इसके अलावा कभी सिफारिश है, कभी शिफात है, इससे भी अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। दूसरी तारीफ लीजिए इब्ने जरीर रहमहुल्लाह की, बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं कि इन्नल्लाह लम यज़ल अफ़ुवन अन ज़नूबि इबादिही व तरकहुल उकूबता अला कसीर मिन्हा मा लम युशरिकू बिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के गुनाहों से मुसलसल दरगुजर फरमाते हैं कि बहुत से गुनाहों पर सजा ही तर्क फरमा देते हैं, बशर्ते कि वो बंदा शिर्क में मुबतला ना हो। क्या प्यारी बात है, यानी बार बार अल्लाह चेक करते हैं। अच्छा कोई भी तरीका हो, चलो जाने दो जाने दो जाने दो, ओवर लुक स्टाइल। और इसी तरह से इमाम जज्जाज क्या कहते हैं, तारीफ सुन लीजिए। कहते हैं कि वल्लाहु ताला अफुवुन अनिल ज़ुनूबी तारिकुल उकूबती अलैहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह गुनाहों को भी माफ कर देते हैं और इन गुनाहों के करने पर जो सजाएं हैं इनको भी अपने बंदों से हटाने वाला है। पेनल्टी होती है ना, बस आपको पता है हदूद तक के ऐसे मुकदमात हैं। अल्लाह जब किसी को माफ करना चाहता कहता जाने दो, इस फाइन। इसलिए इमाम सादी क्या कहते हैं, कहते हैं कि अलफू वो ज़ात है जिसकी सिफत ही माफ करना, बख्शना और दरगुजर करना है, और अपने बंदों को माफ करना खास अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है। लिख लें, बंदे बंदों को नहीं माफ करते, अल्लाह कभी किसी बंदे के बस ना डाले आपको मुझे। सबसे आसान है रब को मनाना, सबसे जल्दी रब मान जाता है, वो रूठा रब मानता है, बंदे तो मुंह नहीं सीधा करते। आप पाँव के अंदर रखे वो पगड़ियां उतरवा के लोग रखते, कहीं इज्जतें खराब करते, कहीं पाँव को हाथ लगवाते, ना ना अल्लाह में किसी बंदे के बस पे ना डालना। और याद रखिए कि वो कहते हैं कि हर इंसान उसकी रहमत और करम का मोहताज है, वैसा ही इंसान मगफरत और माफी का भी मोहताज है। अल्लाह ने चूंकि मगफरत और माफी का वादा कर रखा है हर उस शख्स के लिए जो मगफरत और माफी के असबाब लेकर आए, क्योंकि अल्लाह क्या फरमाता है, व इन्नी लगफ़ारु लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा अहतदा। जी बहुत बख्शने वाला, ये सूरह तौहा की आयत 82 है। अल्लाह कहता है बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उनको जो तौबा करें, ईमान लाए, नेक अमल करें और राह रास्त पर भी रहें। और इसके बाद फिर इमाम इबन कय्यम रहमहुल्ला ने इस नाम को कैसे समझा, फरमाते हैं कि वो ज़ात अलफ है और इसका मुआफ़ करना पूरी मखलूक के लिए आम है। अगर इसका आफ ना होता तो ज़मीन अपने रहने वालों को गर्क कर देती। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्या पता चला कि अल्लाह अल अफ़ है।